हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आर्यन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला था, आप क्या जाने पिताजी, अगर उस वक्त मैं उसकी थोड़ी सी भी मदद कर पाता तो आज मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट महसूस नहीं होता। उसे मैंने दिल से अपना दोस्त माना था, मैं उससे प्यार करता था, और अब वो इस तरह से मुझे छोड़कर चली जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कैसा लग रहा है। अब ये सुनकर धीरज जी लाल आंखों से उसकी ओर देखते हुए बोले थे, बंद कर अपनी बकवास, ये क्या बकवास कर रहा है तू, अरे क्यों यहाँ बैठकर बंदरों की तरह मुंह बना रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर, बात जरा सी भी बाहर गई ना तो तुझे पता भी है कि हमारे घर खानदान की इज्जत के साथ क्या होगा, सब समझ में आ रहा है या नहीं, लोग हमारा मजाक बना देंगे, उंगलियां उठेंगे, तू जानता भी है इस बात का मतलब क्या है, समझ में आता है कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा मायने रखती हैं। तुझसे ज्यादा समझदार सिद्धार्थ खुराना निकला, कम से कम मीडिया में सबके सामने उसे डिवोर्स करने का नाटक करके उसने अपनी जान तो छुड़ा ली, जिसकी वजह से उसे ट्रोल नहीं किया जा रहा, और तेरी ये बेवकूफ़ी भरी बातें अगर किसी के भी सामने आ गई ना तो हम ना मीडिया के सामने मुंह दिखाने लायक रहेंगे और ना ही किसी और के, इसलिए अपनी ज़ुबान और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर, फालतू कुछ भी बोलने की कोशिश मत कर, और वैसे भी तेरी बहन का तुझे कितनी बार कॉल आ रहा है, जाकर उससे बात कर, वो मुझे फ़ोन करके परेशान हो गई कि तू उससे बात तक नहीं कर रहा। अब आर्यन पूरी तरह से इरिटेट होते हुए बोला था, बस कीजिए पापा, वो दोस्त थी मेरी, भले ही वो सपना प्यार में ना बदल पाया हो, लेकिन कम से कम दोस्ती होने के नाते तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ ना। अब धीरज जी तुरंत उसे डांटते हुए बोले थे, हे भगवान, ये लड़का पहले तो दुनिया भर की लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाता फिरता था, और जब से इसे थोड़ी बहुत अक्ल आई है तब से ये एक मरी हुई लड़की से दोस्ती निभाने चला है, तो पागल हो गया है क्या, जो लड़की मर चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है, उसके चक्कर में हमारे खानदान की इज्जत बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उसके बारे में सोचना भी मत, अगर तेरे मुंह से मैंने एक शब्द भी उसके नाम का सुना ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह धीरज जी ने अच्छी तरह से आर्यन की क्लास लगा दी थी। वहीं आर्यन मन ही मन बोला था, माफ कर देना झलक, मैं तुम्हारी जिंदगी में तो कोई मदद नहीं कर पाया और अब तुम्हारी मौत का शोक भी नहीं मना पा रहा हूँ। ये सोचकर वो अपने कमरे में चला गया और खुद को अंदर से बंद कर लिया। वहीं धीरज जी ने मन ही मन ठान लिया था कि वे आर्यन को इतना ज़्यादा बिजी कर देंगे कि उसके पास झलक के बारे में सोचने या किसी भी तरह की बातों का कोई भी मोटिव ही नहीं रहेगा। ये सोचकर उन्होंने गहरी सांस ली। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह झलक और अनामिका जल्दी ही अपने पूरे सामान के साथ घर वालों से विदा लेकर सीधा अकेडमी के लिए रवाना हो चुके थे। अब आरव जी ने झलक के सिर पर हाथ रखते हुए कहा था, मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा मजबूत और ब्रेव हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी बड़ी योद्धा बनो कि दुश्मनों को केवल एक हाथ से ही धूल चटा दो। ये कहते हुए अब उनका सीना पूरी तरह से गर्व से फूल गया था। अब झलक ने हल्का सा आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। एक पल के लिए झलक को ऐसा करते देख सभी चौंक से गए थे, लेकिन फिर अनामिका ने भी आगे बढ़कर झलक की तरह अब आरव जी को गले से लगा लिया, वो भी आकर उनसे लिपट गई थी। अपनी दोनों बेटियों को इस तरह अपने करीब देखकर अब आरव जी की आंखें एक बार फिर छलक उठी थी, लेकिन झलक ने बिना कुछ कहे उनके आंसू साफ कर दिए और उन्हें रोबदार लेकिन दबंग अंदाज में देखते हुए बोली, आपकी आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि अब कोई और रोएगा। ये बोलकर झलक सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। वहीं अनामिका भी झलक के इस अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुई और बोली, याद रखना, अगर आपने आंसू बहाए ना तो मैं उसे बता दूंगी, वैसे भी आपकी एक बेटी तो शरीफ है, लेकिन आपकी दूसरी बेटी बड़ी खतरनाक है, बच के रहिएगा पापा। ये बोलकर हंसते हंसते अनामिका भी सबका आशीर्वाद लेने के बाद सीधा गाड़ी में बैठ गई थी। वहीं दादाजी मुस्कुराते हुए बोले थे, हम 2 घंटे बाद वहाँ आ जाएंगे, तब तक तुम लोग वहाँ रहोगे, हम रोज़ तुम दोनों से मिलने किसी न किसी बहाने आ जाया करेंगे, समझ रही हो ना मेरी बात, लेकिन इस बात के बारे में किसी को बिल्कुल भी मत बताना। ये सुनकर अनामिका ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी थी, साथ ही साथ उसने अपने दादा से वादा कर लिया था कि वो भूलकर भी किसी के सामने उनका नाम नहीं लेगी। फिलहाल देर न करते हुए वे लोग जल्दी ही वहां पहुंच चुके थे, और जैसे ही एकेडमी के लोगों ने इस तरह से झलक को अनामिका के साथ आते हुए देखा तो सबके माथे पर बल पड़ गए। वहीं दूसरी ओर दिवाकर जी हैरानी से झलक को देखते हुए सोचने लगे थे कि ये बदतमीज लड़की यहां भी आ गई, न जाने अब ये बाकी के स्टूडेंट्स और यहाँ के लोगों के साथ क्या क्या करेगी। वहीं अवंतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, वो मन ही मन सोचने लगी थी, मैंने तो सोचा था कि आज के आज केवल एक दो चक्कर काटने के बाद ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन ये तो सच में यहाँ आ गई हैं, इसका मतलब साफ है कि अब पूरे 6 महीने इन्हें झेलना पड़ेगा। फिलहाल जैसे ही अवंतिका ने झलक और अनानिका को अपने अपने बैग्स के साथ देखा, वो चुपचाप सीधा उनके कमरे में गई। वहां जाकर उसने उनके बाथरूम की टोटी खोल दी और पानी खुला छोड़ दिया। उसके बाद वो सीधे जाकर भीड़ में शामिल हो गई, क्योंकि वो इतनी आसानी से उन दोनों को चैन से रहने देने वाली नहीं थी। बाथरूम की टोटी खोलने का मतलब था कि अगर बाथरूम का पानी यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे में भर जाएगा और बाहर निकलने की कोई जगह भी नहीं थी। ऊपर से जानबूझकर उसने मेन बाथरूम का दरवाजा भी बंद कर दिया था ताकि अगर कोई दरवाजा खोले तो पूरा पानी एक साथ बाहर निकले और सामने वाले पर ही गिर जाए। ये सोचकर अवंतिका के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई और वो भीड़ में जाकर गुम हो गई। वहीं दूसरी ओर अनामिका ने जल्दी से जाकर ट्रेनर से मुलाकात की और बोली, सर हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये सुनकर ट्रेनर ने कहा, जी हाँ आपका स्वागत है। तभी वहाँ मिस बबीता आ गई। बबीता वहाँ की लेडी ट्रेनर थी। अकेडमी में कई ट्रेनर्स थे जिन्हें खुद दिग्विजय सिंह जी ने ट्रेन किया हुआ था। जैसे ही बबीता वहाँ पहुंची उन्होंने आकर अनामिका और झलक दोनों से मुलाकात की और बोली, अभी इतना समय नहीं है कि तुम लोगों से ज्यादा बातचीत की जाए। तुम दोनों अपने अपने कमरों में जाकर सामान रखो, कपड़े चेंज करो और जल्दी वापस आओ। अकेडमी का ड्रेस कोड है सफेद रंग की टी शर्ट और सफेद रंग की पैंट, सबको यही पहनना होता है। इसलिए देर न करते हुए वे दोनों जल्दी से अपने कमरे की ओर चली गईं। अनामिका कहना चाहती थी कि उन्हें थोड़ा बड़ा कमरा दे दिया जाए क्योंकि वे दोनों बहनें एक साथ रहना चाहती थीं, कम से कम एक रात के लिए ही सही, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही अनामिका झुंझलाकर बोली, देखा तुमने झलक, ये कितना छोटा कमरा है यार। हम लोग तो एक दिन भी मुश्किल से यहाँ रह पाएंगे, पूरे एक महीने यहाँ कैसे रहेंगे, और ऊपर से मैंने दादाजी को फेक प्रॉमिस कर दिया था। तभी झलक ने उसे रोकते हुए कहा, अभी हमारे पास इन सब बातों को डिस्कस करने का वक्त नहीं है, फटाफट बाथरूम में चलो। तुम बाथरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं सारा सामान सेट कर देती हूँ। ये कहते हुए झलक ने अकेडमी के कपड़े अनामिका के हाथ में थमा दिए। जैसे ही अनामिका आगे बढ़ी और बाथरूम का दरवाजा खोला तो एकदम से पानी की नहर सी उसके पैरों के नीचे फैल गई।
ये देखकर अनामिका जोर से चीख पड़ी क्योंकि एक एक करके उनके सारे कपड़े भीगने लगे थे। इतना ही नहीं, बेडशीट, बेड और गद्दा भी पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। वैसे भी वहां गद्दा ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था जिसकी वजह से पानी हर जगह फैल चुका था। अनामिका की चीख सुनते ही कुछ ट्रेनर्स और बाकी स्टूडेंट्स दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर अवंतिका दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि आखिरकार उसका प्लान कामयाब जो हो गया था। झलक लाल आंखों से पूरे कमरे का ये हाल देख रही थी। तभी बबीता वहां पहुंची और अनामिका व झलक को देखते हुए बोली, ये सब क्या है, पहले ही दिन आते ही इतना सारा पानी खोल दिया। अरे कोई इस तरह से बाथरूम पानी से भरकर रखता है क्या? ये सुनकर झलक और भी लाल हो गई और उनकी ओर देखते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं,